भगवान का जो रोचन है वो बहुत पवित्र है।
सीधा सारण ठाकुर का त्रिभाव दिवस है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका त्रिभाव दिवस आता है, आविर्भाव दिवस नहीं आता। इसलिए साल में केवल एक ही बार हम इनको याद कर पाते हैं। कुछ वैष्णव ऐसे हैं, वैष्णव आचार्य, जिनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव दिवस भी आता है और त्रिभाव दिवस भी आता है। तो ऐसे आचार्यों का तो साल में दो दिन अवसर मिलता है याद करने का, लेकिन कुछ ऐसे भी वैष्णव आचार्य हैं जिनका आविर्भाव दिवस आता ही नहीं, केवल त्रिभाव दिवस आता है। इसका कारण यही है कि जब उनका जन्म होता है तो वो तिथि, उस तिथि का रिकॉर्ड होता ही नहीं। विशेष रूप से कुछ ऐसे वैष्णव आचार्य हैं जो पाठशाला में गए ही नहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगर उन्होंने पाठशाला में शिक्षा नहीं प्राप्त की तो फिर जन्म तिथि का रिकॉर्ड होता ही नहीं, और फिर जन्म का जो दिन है वो वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता। लेकिन तिरुभाव जब होता है तो बहुत से वैष्णव की दृष्टि में वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनका जो तिरुभाव दिवस है वो तो रिकॉर्ड में आ जाता है। इसलिए साल में केवल उनका तिरुभाव दिवस ही मनाया जाता है, आविर्भाव दिवस अज्ञात रहता है। सारंग ठाकुर भी लगता है कि इसी प्रकार के वैष्णव थे कि वो पाठशाला में गए ही नहीं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो जन्म तिथि का रिकॉर्ड उनका नहीं मिला। तो प्रभु जी ने जो घटना बताई, दो घटनाएं बताई उनके जीवन की। तो एक घटना तो बताई कि जिस बकुल वृक्ष के नीचे ये रहते थे और अपने अर्चा विग्रह की पूजा करते थे, वो बकुल वृक्ष सूख गया। कोई वृक्ष सूख जाए तो उसके नीचे रहने वाले जो व्यक्ति हैं उस वृक्ष को छोड़ देते हैं, दूसरे हरे भरे वृक्ष के नीचे जाते हैं। लेकिन सारंग ठाकुर का कुछ नियम ऐसा ही था कि बकुल वृक्ष सूख गया, अब अगर वृक्ष सूख जाए तो छाया फिर कहाँ मिलेगी, वृक्ष सूख जाए तो छाया कहाँ मिलेगी, तो उस वृक्ष का फिर फायदा क्या है। वृक्ष का लाभ यही होता है कि उसकी छाया मिलती है और छाया से रक्षा होती है, बड़ी रक्षा होती है। लेकिन इन्होंने जो है उस वृक्ष को नहीं छोड़ा। अब छाया नहीं मिल रही है तो भी वृक्ष को नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ऊंचा विचार है। क्या सोचते हैं कि जब ये हरा भरा वृक्ष था तो मैंने इसके सुविधाएं का फायदा उठाया, अब ये सूख गया है तो मैं इसको छोड़ के जाऊं, अन्याय है। तो वो जो है इस प्रकार की भावना होती है कि मैं इस वृक्ष के साथ अन्याय कर रहा हूं, जब हरा भरा था तो मैं इसकी छाया का लाभ उठा रहा था, अब सूख गया तो मैं इसको छोड़ दूं, क्यों छोड़ दूं। तो ये भावना है। महाभारत में भी ये कथा आती है कि एक कौवा था, तो वो जो है जिस पेड़ में रहता था तो काफ़ी सालों तक तो वो हरा भरा रहा, फिर बाद में जो है जब आयु पूरी हो गई तो वो सूख गया। जब वो सूख गया तो उस वृक्ष में रहने वाले जितने पक्षी हैं वो सब चले गए, उस वृक्ष को छोड़ करके चले गए। लेकिन वो जो कौवा था उसी पेड़ में निवास करता रहा। अब उस पेड़ में जो है उसे ना तो कुछ फल मिल रहे ना छाया मिल रही, लेकिन तो भी वो उस वृक्ष को नहीं छोड़ रहा। तो उसके इस आग्रह को देख करके इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र आए। इंद्र ने पूछा कि क्या कारण है कि तुम इस वृक्ष को नहीं छोड़ के जा रहे, जितने पक्षी हैं सब छोड़ के चले गए, तुम क्यों नहीं छोड़ के जा रहे इस वृक्ष को, तुम्हें इस वृक्ष से अब क्या सुख मिल रहा है कि तुम इसको नहीं छोड़ रहे हो। तो उस पक्षी ने भी यही कहा कि जब तक ये वृक्ष हरा भरा था तो मैं इस वृक्ष का लाभ उठाता रहा, अब ये वृक्ष सूख गया तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, ये मेरे से अन्याय नहीं हो सकता। उस कौवे का ऐसा भाव देख करके इंद्र ने जो है अमृत की बूंद डाल दी, अमृत की बूंद डाल दी तो वृक्ष हरा भरा हो गया। तो ये कथा महाभारत में आती है। तो इंद्र को तो अमृत की बूंद डालनी पड़ी उसको हरा भरा करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अमृत की बूंद नहीं डालनी पड़ी, उनका पूरा शरीर ही अमृत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब आलिंगन किया उस वृक्ष का तो वह हरा भरा हो गया, है ना। इसी प्रकार का एक वृक्ष है कालिया दह में मिलता है, वृंदावन के कालिया दह में मिलता है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि प्राचीन काल में जब गरुड़ जी ने देवताओं से अमृत का कलश छीना था तो आकाश में उड़े थे अमृत का कलश लेकर के, नहीं देवताओं से, देवताओं से इंद्र को हरा करके अमृत का कलश छीना था, तो आकाश में जब उड़े थे तो उस कलश से एक बूंद अमृत उस वृक्ष में गिर गई, इस कारण से वो वृक्ष अभी भी हरा भरा है। और यमुना जी के तट पर जहाँ कालिया का दाह था तो कालिया के दाह के कारण कालिया दाह का जितना पानी था वो खोलता रहता था, इसकी ज्वाला से खोलता रहता था, और हवा से जब वो पानी की कुछ बौछार जाती थी आसपास के क्षेत्र में तो वहाँ पर जितनी घास फूस थी और जितने पेड़ थे सब सूख गए थे, लेकिन ये वृक्ष हरा भरा था, इस वृक्ष पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा। तो काले देह के किनारे एक ही वृक्ष था जो हरा भरा था, कदम का वृक्ष, और उसी ऊपर चढ़ करके भगवान कृष्ण काले देह में कूदे थे और काली का दमन किया था। तो वो वृक्ष अभी भी है, उसमें अभी भी निकल रहे हैं, कोपे निकल रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक वृक्ष का आलिंगन किया, वो भी अभी हरा भरा है, है? इंद्र ने जो है अमृत की बूंद डाली तो वो हरा भरा हो गया। तो इस तरह से ये घटनाएं देखी जाती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे इंद्र को कौवे पर दे आई, तो चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्त पर फिर क्यों नहीं दे आएगी? ये तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया तो इस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। और दूसरी घटना जो उन्होंने बताई उसमें ये बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि इनके दिन भर में जरा भी समय नहीं है विश्राम करने का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रात्रि के समय श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन करते थे, तो इनका नियम था रात भर कीर्तन करने का। तो शाम को जो है गंगा जी पार करते थे तैर करके, इतने निर्धन थे, इनके पास पैसा नहीं था कि नौका के द्वारा गंगा जी को पार करें, तो तैर करके पार करते थे और फिर श्रीवास संगम में जाकर के रात भर कीर्तन और नृत्य करते और सवेरे फिर आ जाएं। तो उसी बगल के वृक्ष के नीचे उनके जो अर्चा विक्रय थे उनकी सेवा, दिन भर सेवा करना। अब दिन भर सेवा करना तो पैसा तो था नहीं, तो भिक्षा मांग करके ही कुछ चावल है, आटा है, दाल है, वो सब लाते। फिर उसी पेड़ के नीचे चूल्हा बना करके और सूखी लकड़ी बीन करके लाते और सब भोजन बनाते, अर्चा विक्रय को भोग लगाते, अर्चा विक्रय का श्रृंगार करते, तो पूरा दिन इनका जो है इसमें बीत जाए। अब विश्राम करने का जरा भी समय नहीं, और इनको जो है कोई चिंता नहीं, लेकिन भगवान को चिंता होती। भक्त को जो है अपने परिश्रम की चिंता नहीं होती, वो भगवान की सेवा में बड़ा खुश रहता है, लेकिन भगवान को चिंता होती। तो भगवान इनसे बार बार कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं इनसे कि तुम शिष्य बनाओ, लेकिन ये सोचते थे कि मैं शिष्य बनाने लायक नहीं हूँ, मैं किसी का गुरु बनने लायक नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल योग्य ही नहीं हूँ, मैं तो शिक्षित ही नहीं हूँ, मैं तो पाठशाला में भी नहीं पढ़ा, तो मैं किसको शिष्य बनाऊँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हर बार कहते हैं कि नहीं तुम शिष्य बनाओ, तुम शिष्य बनाओ। तो उन्होंने जो है फिर तंग आकर के सोचा कि भगवान की बड़ी अवज्ञा हो रही है मेरे द्वारा, तो चलो आज जो भी व्यक्ति मिलेगा उसको मैं शिष्य बना लूँगा। तो जब गंगा जी में स्नान करने के लिए उतरे तो एक लाश जो है दिखाई दी, तो सोचा कि चलो अच्छा है, शिष्य की झंझट शिष्य भी बना लूंगा और शिष्य की झंझट से भी बच जाऊंगा। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो भगवान की आज्ञा का जो है मैं पालन भी कर लूंगा और कोई शिष्य भी नहीं, एक प्रकार से शिष्य नहीं बनाया तो शिष्य बना लेता हूँ इसी को, तो मतलब नाम तो हो जाएगा कि मैंने शिष्य बनाया। तो ये नहीं सोचा था कि जिंदा हो जाएगा। तो इन्होंने जो है उसके कान में जब मंत्र पढ़ करके सुनाया तो सच में वो जिंदा हो गया। हरी हो। तो जब जिंदा हो गया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला मुरारी ना। तो उस व्यक्ति के बारे में ये बताया जाता है कि इस व्यक्ति को जो है पास के गांव में जो है इस व्यक्ति का विवाह हो रहा था, तो गंगा जी उस गांव से बह करके यहाँ पर आ रही थी जहाँ पर ये थे, मोदा दुरुमती बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उस गांव से बह के गंगा जी आ रही थी, तो उस गांव में इस व्यक्ति का विवाह हो रहा था और विवाह के समय ही सर्प ने काट लिया, तो सर्प के काटने से जो है उसकी मृत्यु हो गई है? तो फिर यही कहा जाता है सर्प के काटने से अगर किसी की मृत्यु हो तो ना तो उसको जलाया जाए ना उसको दफनाया जाए, तो क्या किया जाए, गंगा जी में बहा दिया जाए। तो उसको जो है गंगा जी में बहा दिया गया था और जैसे वो जीवित हुआ तो वो तो इनका फिर पूरा जीवन भर के लिए शिष्य बन गया। अब उसने कहा कि आपने मुझे जीवित किया है तो अब तो मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी सेवा में रहूँगा जीवन भर, तो इनकी सेवा में वो आ गया। लेकिन गांव वालों को पता चला, आगे चलकर गांव वालों को पता चला कि अरे उसका तो विवाह हम कर रहे थे और वो तो जीवित हो गया है, तो गांव वाले आए इनके पास और बोले कि भैया अब चलो तुम्हारे तो शादी हो रही थी ना, तो वो बोला कि अब तो मेरा दूसरा जीवन है, मैं तो मर गया था और आप लोगों ने मुझे गंगा जी में बहा दिया, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं इनकी सेवा में रहूंगा। तो भगवान जो है मतलब कैसी व्यवस्था करते हैं कि इनको कुछ विश्राम तो मिले, इनकी इच्छा नहीं थी विश्राम करने की, लेकिन भगवान ने मतलब ऐसी व्यवस्था करी। अगर ये अर्चक विग्रह की पूजा करना चाहते तो पूजा करें, लेकिन जो और सहायता के कार्य हैं वो तो कम से कम कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। तो इस तरह से इनको जो है एक ऐसा शिष्य मिल गया जो जीवन भर इनके साथ रहा, मतलब उसका और कोई काम नहीं था, इनकी सेवा के अलावा और कोई काम नहीं था, और भगवान जो ही चाहते थे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग नहीं चाहते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं। भक्त जो है भगवान की सेवा में दिन रात लगा रहता है लेकिन भगवान जो है उस भक्त की सेवा में किसी व्यक्ति को देना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान ने जो है इनकी सेवा में एक व्यक्ति की व्यवस्था करी और देखो कैसे इनके साथ भगवान ने ट्रिक चाल चली, भगवान ने चाल चली, इन्होंने सोचा चलो इसको दीक्षा में दे देता हूँ अच्छा है। तो शिष्य बनाने की झंझट भी नहीं है और शिष्य बनाने का नाम हो जाएगा कि मैंने शिष्य तो बनाया, तो भगवान को बोल दूंगा कि मैंने शिष्य बनाया, आपकी आज्ञा का पालन तो किया मैंने। इस तरह से इनका जो है मतलब पूरे जीवन भर के लिए एक शिष्य बन गया। और वैसे आज जो है ये पूरा महीना ही बहुत पवित्र है, ये पूरा जो महीना है अग्रहायण का महीना है, कार्तिक के महीने के बाद जो अगला महीना है अग्रहायण का महीना है। तो गीता में भगवान ने इसको कहा है मासानाम मार्ग शीर्ष हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। तो मार्ग शीर्ष महीना जो है सब महीनों में श्रेष्ठ होता है, बहुत पवित्र होता है मार्ग शीर्ष महीना। लेकिन हम लोग जो है हमेशा यही सुनते हैं कि कार्तिक का महीना सबसे पवित्र है और कार्तिक के महीने में हम लोग व्रत भी करते हैं, कार्तिक का व्रत भी करते हैं, इस महीने का तो हम व्रत नहीं करते हैं। लेकिन गीता में तो भगवान इस महीने को पवित्र बताया है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों महीने पवित्र हैं, ये कार्तिक का जो महीना है ये राधा रानी का महीना है और ये मार्गशीर्ष का जो महीना है ये कृष्ण का महीना है। जैसे राधा और कृष्ण का जो नाम है तो पहले राधा रानी का नाम आता है, बाद में कृष्ण का नाम आता है। उसी प्रकार से कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना है, वो पहले आता है, और मार्गशीर्ष का महीना बाद में आता है ना। तो चूंकि दोनों महीने पवित्र हैं, लेकिन कृष्ण को राधा रानी का महीना ज्यादा प्रिय है। कृष्ण चूंकि राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार हम लोग जो है राधा रानी के महीने का व्रत करते हैं। जैसे कि राधा कुंड और श्याम कुंड, तो राधा रानी ने बनाया राधा कुंड और कृष्ण ने बनाया श्याम कुंड, लेकिन कृष्ण को राधा कुंड ज्यादा प्रिय है राधा रानी की के कारण राधा कुंड ज्यादा प्रिय है। तो सब लोग जाते हैं राधा कुंड में स्नान करने के लिए, तो राधा कुंड में स्नान कर लिया तो श्याम कुंड में भी स्नान हो गया, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से कार्तिक का अगर हम महीना अगर व्रत करते हैं तो इस महीने का व्रत भी हो जाता है, इसलिए इस महीने का व्रत हम लोग नहीं करते। लेकिन इस महीने का व्रत किया था ब्रज की कुमारियों ने, ब्रज की जो कुमारी कन्याएं थी, तो उन्होंने इस महीने का व्रत किया था, है ना। तो भागवत में कहा है कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत का जो पहला महीना था तो उसमें नंद ब्रज की जो कुमारिकाएं हैं, चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्य अर्चन व्रतम, तो उन्होंने कात्यायनी का कि अर्चन का व्रत लिया था। तो ब्रज की जो कन्याएं हैं उन्होंने व्रत लिया था कात्यायनी, और उनकी प्रार्थना क्या थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः, कि हे कात्यायनी हे महामाया कात्यायनी महामाये कात्यायनी महामाये अधीश्वरी महायोगिन, हाँ महायोगिनी अधीश्वरी, तो हे कात्यायनी हे महामाया हे महायोगिनी हे अधीश्वरी नंद गोप के पुत्र को आप हमारा पति बना दीजिए। तो इस भाव से उन्होंने ये व्रत किया था। तो ये जो व्रत किया था, तो ये महीना जो है हेमंत का पहला महीना है, तो ज्वाला होता है, काफ़ी ज्वाला होता है, और यमुना जी का जल बहुत ठंडा होता है ना। और ये बहुत छोटी अवस्था की है। तो ये जो है कन्याएं रोज इन्होंने इस महीने यमुना जी में स्नान करने का नियम बनाया था। तो ये जो नियम था ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए था। तो ये जो भाव था ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि इस भाव में उनका कोई अपना सुख नहीं है, अपना सुख नहीं है, ये भगवान को सुख देना चाहती हैं, भगवान को पति बनाना चाहती हैं। इस भौतिक संसार में ऐसा संबंध नहीं होता है कि स्त्री कहते हैं कि किसी पुरुष से प्रेम करती है, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं होता है, वो शोषण की भावना होती है कि वो सुख लेना चाहती है और वो जो है उस पुरुष का शोषण करना चाहती है ना। तो ये वास्तव में काम वासना है, ये प्रेम नहीं होता। उसी प्रकार से कोई भी पुरुष स्त्री से प्रेम करता है तो प्रेम तो कहा जाता है, प्रेम का नाम होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, काम वासना होती है, शोषण की भावना होती है। तो ये शोषण ही का सिद्धांत है, स्त्री का स्त्री पुरुष का शोषण करना चाहती है, पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ब्रज की कुमारी कन्याएं हैं तो इनके अंदर कोई काम वासना नहीं है, इनके अंदर शुद्ध प्रेम है कि भगवान को ये जो है प्रसन्न करना चाहती हैं, भगवान की सेवा करना चाहती हैं। इस भाव से ये जो है पूजा कर रहे हैं, कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। और कात्यायनी की पूजा वैसे तो गीता में भगवान ने देवताओं की पूजा की निंदा की है, भगवान कहते काम ऐसा हित ज्ञाना प्रपद्यंते ने देवता, कि अन्य देवताओं की पूजा लोग करते हैं क्योंकि उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो चुका है, लेकिन इनकी निंदा नहीं हो रही। जो ब्रज की कुमारी हैं ये कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, ये इनकी निंदा नहीं हो रही। इसमें कोई विशेष बात है, क्यों कि भगवान करे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जो लोग क्योंकि उनकी कामनाओं के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो चुका है, तो उनकी भौतिक कामनाएं होती हैं कि देवता से, उस देवता से मैं अपनी इस कामना को पूरी करूं, और उनका ज्ञान हरण हो चुका है, ज्ञान हरण हो चुका है कि वे नहीं समझ रहे हैं कि हमको जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहिए, और इन कामनाओं के पूरा होने से भी क्या होगा, आखिरकार मृत्यु के समय वो सब वरदान समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तो कितनी तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या की थी, और कैसे तपस्या की थी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और पंजों के ऊपर, दोनों पंजों के ऊपर खड़े होकर के, और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, और आकाश की तरफ देखता हुआ 100 साल देवताओं के, तो मनुष्यों के 36,000 साल, 36,000 साल तक तपस्या की, और फिर वरदान मांगा। तो वरदान मांगा अमरता का, ब्रह्मा जी का अमरता का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो 17 के वरदान मांग लिए कि आकाश में ना मरूं, और जमीन में ना मरूं, पानी में ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, मैं कितने कितने वरदान मांग लिए। तो वो वरदान जो है ब्रह्मा जी ने दे दिए, और उन सब वरदानों को पूरा करते हुए भी भगवान नरसिंह देव ने उसका वध कर दिया कि दिन में भी नहीं मारा, रात में भी नहीं मारा, संध्या के समय मारा, घर के अंदर नहीं मारा, घर के बाहर नहीं मारा, दिल्ली में मारा, इस तरह से सब वरदानों के होते ही भी उसका वध कर दिया। और जब वध हो गया हिरण्यकशिपु का, तो फिर जो वरदान मिला था अब वो नहीं रहा वरदान, अब अगला उसको जो जीवन मिला है तो उसे अब उसको वो वरदान अब तो नहीं है, है ना। तो मतलब ये है कि भगवान गीता में कहते हैं अंत्यवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, कि उन अल्प बुद्धि वालों का जो फल है वो अंत्यवान होता है, कि मृत्यु के साथ साथ देवताओं का दिया हुआ जो भी वरदान है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि ब्रकासुर, तो ब्रकासुर ने वरदान मांगा शिव जी से, मैं जिसके सिर में हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए, तो शिव जी ने वरदान दे दिया, और शिव जी को ही, शिव जी के सिर में हाथ रखने के लिए तैयार हो गया, और शिव जी बेचारे भाग रहे हैं। आखिर भगवान ने उसके साथ कुछ ऐसी चाल चली कि उसने खुद ही अपने सिर में हाथ रखा और मर गया। अब जब मर गया तो शिव जी के द्वारा जो उसको वरदान प्राप्त हुआ था, अगले जीवन में क्या रहा, अगले जीवन में नहीं रहा, है ना। और वो दावा भी नहीं कर सकता कि कि मुझे शिव जी ने वरदान दिया था, अब क्यों नहीं वो वरदान काम कर रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि पिछले जिंदगी में जीवन में मैं क्या था, तो कहाँ से दावा करेगा। तो इस तरह से देवताओं के द्वारा जो प्राप्त वरदान होते हैं, भौतिक वरदान होते हैं, अंत्यवान होते हैं। तो भगवान गीता में निंदा करते हैं कि देवताओं की पूजा से जो है, मतलब ये लोग, इनका ज्ञान हरण हो चुका है, असली ज्ञान हरण हो चुका है, कि जो जितनी तपस्या कर रहे हैं, जितनी परिश्रम कर रहे हैं, वो उस वरदान को पाने के लिए उतनी ही तपस्या, उतना ही परिश्रम अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें तो क्या होगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान हरण हो चुका है। लेकिन जो ब्रज की कन्याएं हैं, इनके लिए निंदा नहीं है, इनकी निंदा नहीं होती, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है कात्यायनी की, हालांकि देवी की पूजा कर रही हैं, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, तो इनका नहीं कहा जा सकता कि इनके अंदर कोई भौतिक कामना है इसलिए इनका ज्ञान हरण हो चुका, क्योंकि इनकी भौतिक कामना नहीं, इनकी जो है शुद्ध कामना है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर किसी देवता या देवी की पूजा की जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते क्योंकि इसमें खतरा है। मान लीजिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ भौतिक इच्छा पैदा हो गई, तब तो बंधन हो जाएगा, इसे ज़्यादा अच्छा है कि कृष्ण की ही पूजा करें। लेकिन ये जो कन्याएं हैं ये कृष्ण की पूजा नहीं कर सकती, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके लिए बड़ी लज्जा की बात थी, कृष्ण की पूजा कैसे करें, और कृष्ण उस समय मनुष्य की लीला कर रहे थे, तो कृष्ण के प्रति इनका मनुष्य भाव था कि कृष्ण हमारे पति बन जाएं। तो इसलिए कृष्ण की पूजा नहीं करके ये कात्यायनी की पूजा करती हैं। लेकिन कृष्ण को अगर मनुष्य भी मान करके और वे उनको उनसे प्रेम करती हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, उससे जो है इनके इनके लाभ में कोई कमी नहीं होगी कि कृष्ण को अगर इन्होंने भगवान नहीं माना है, मनुष्य माना है, तो इसमें कोई कम लाभ होगा, कम लाभ नहीं होगा। ये जो ब्रज की कन्याएं हैं कृष्ण को मनुष्य मान करके और उनको पति बनाना चाहती हैं, इसमें भी जो है कोई कमी नहीं है कि कोई कम लाभ होगा, क्योंकि जो भाव है उनका तो ये जो है इनका अविनाशी है, क्योंकि कृष्ण मनुष्य नहीं है, कृष्ण तो भगवान है। तो भगवान को अगर कोई मनुष्य भी मान ले और प्रेम करे, मनुष्य भाव में प्रेम करे, तो भी कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान है, वो तो मनुष्य नहीं है। तो इस तरह से ये पूरे महीने उन्होंने ये जो व्रत किया था और बाद में भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया और उनको जो है वरदान दिया, तो ये पूरा जो महीना है ये हमें याद करना चाहिए कि कात्यायनी व्रत का महीना चल रहा है। जैसे कार्तिक के महीने में हम दामोदर की लीला का स्मरण करते हैं, रोज दामोदर लीला का स्मरण करते हैं। दामोदर लीला तो एक ही दिन हुई, कार्तिक के महीने के बीच में अमावस्या जो आती है उस दिन हुई थी, लेकिन पूरे कार्तिक में हम दामोदर लीला का स्मरण करते हैं। लेकिन इस कात्यायनी व्रत में भी उन्होंने तो पूरे महीने व्रत किया, पूरे महीने व्रत किया उन्होंने, और महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए। तो हमें इस लीला का भी स्मरण करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, शिला सारंग ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय।